जीवन की लय पर सांसों के सुर में दिल ये हमारा गुनगुना रहा है, गुनगुना रहा है। करन करावन हार परम पिता करवा रहा है, करवा रहा है।
ओम शांति। हम सबके सामने दिल्ली से बाप दादा की दिल का विशेष रतन चक्रधारी बहन जी हम सबके सम्मुख बैठे हैं। आप ऑल इंडिया चेयरपर्सन विमेन्स विंग का है, बाबा जैसे महिलाओं का उद्धार कर रहे हैं, महिलाओं का विंग का अध्यक्ष बन करके साथ साथ में रशिया देश जो कम्युनिस्ट कंट्री थे, पहले पहले बहन जी ने वहाँ बाबा का झंडा लहराने के लिए निमित्त बन गए। सदर्शन चक्र से होगा माया का चक्कर चकनाचूर, चक्करदारी बनने से होगा भविष्य में चक्करदारी। आइए अभी हम चक्करदारी बहन से सुनेंगे बात।
ओम शांति। तो आज प्रातः जब अपने आदरणीय दादी जानकी जी बाबा के सम्मुख का अनुभव सुना रही थी, उस समय मुझे भी एक बाबा का अनुभव याद आया। वो समय था जब अव्यक्त बाप दादा आते थे तो कुछ अपनी दादियां और कुछ दीदियां भी बाबा के आवाहन के समय बाबा के सम्मुख बैठते थे, और आवाहन हो जाने के पश्चात आई हुई पार्टियों को बाबा से मिलने का सुअवसर व्यक्तिगत रूप से प्राप्त होता था। तो एक बार जब बाबा का आवाहन कर रहे और बाबा आए तो बाबा ने कुछ महावाक्य उच्चारण किए और अंत में एक बात कही कि आज मैं आप बच्चों को एक नया अनुभव कराऊंगा। ऐसा कह बाबा ने कहा, बाद में अर्थात जब सब ग्रुप्स मिल लेंगे, और ये भी सिस्टम होता था कि जब बाबा जाते थे तो फिर अपनी आदरणीय दादियां और कुछ दीदियां सन्मुख बैठती थीं और फिर बाबा विदाई लेकर जाते थे कुछ महावाक्य उच्चारित करने के पश्चात। तो जब बाबा सब ग्रुप से मिल रहे हैं तो मुझे याद है हम भी लालियत थे कि वो समय मिस ना हो जाए जो आज बाबा ने हमको कोई विशेष बात सुनानी। तो जब बाबा सन्मुख बैठे तब बाबा ने कहा कि आप बच्चे बाबा का एक नया अनुभव करने के लिए बैठे हो ना, और सभी मुस्कुरा रहे थे। तो बाबा ने कुछ महावाक्य उच्चारण करने के पश्चात फिर ऐसे कहा कि बच्चे बाबा जा रहा है अपने घर वापिस, चलोगे बाबा के साथ? तीन बार बाबा ने पूछा चलोगे बाबा के साथ, तो कौन ऐसा है जो ये कहेगा नहीं चलेंगे। सभी उस समय केवल सिर ही हिला रहे थे कि हम भी चलेंगे। तो बाबा ने कहा चलो चलो बच्चे चलो, बाबा जा रहा है वतन में, चलो आप भी बच्चे चलो। ऐसे बाबा धीरे धीरे चलो बच्चे बाबा वतन में साथ ले चलता है चलो, ऐसे कहते कहते बाबा तो चले गए, लेकिन सब बच्चे तो वहीं बैठे हैं, लेकिन अशरीरीपन का अनुभव अवश्य हो रहा है। लेकिन जैसे बाबा चले गए, उस समय एक ऐसी स्थिति हो जाए कि हम भी चले गए घर और घर का ही अनुभव हो रहा है, मैं निजी अनुभव कहूंगी कि इस प्रकार का कोई अनुभव ऐसा नहीं हो रहा था। हाँ, अशरीरीपन का बहुत सुंदर, बहुत सुहावना अनुभव अवश्य था। काफी समय के पश्चात बाबा की ये बोल मुझे याद आते रहे कि बाबा हमको कहे चलो और हम बाबा के साथ जा ना पाए, ये कितनी विचित्र सी बात है। और लास्ट समय भी ऐसा आएगा कि बाबा का इशारा मिलेगा कि चलो बच्चे घर चलो, और अगर हम जा ना पाए तो ये क्या होगा। ऐसा सोचते सोचते जो मुझे जवाब मिला वो यही जवाब मिला कि जब कर्म इंद्रियों में रहते हुए, क्योंकि जब बाबा तन में आते हैं तो तन में आकर बोलते भी हैं, किसी बच्चे को कुछ देना है देते भी हैं, कोई डायरेक्शन सुनानी है सुनाते भी हैं, लेकिन सब कुछ करते हुए भी बाबा इस स्मृति में सदा ही अवश्य रहते ही हैं कि मैं परम आत्मा सब आत्माओं का पिता हूं। कर्म इंद्रियों से कर्म करते अपने पोजीशन नहीं भूल जाते कि मैं कौन हूं और कहां से आया हूं। इसलिए बाबा जो ही तन में आते हैं तो आते दृष्टि देने लगते हैं, और जो ही तन से जाना हो तो सेकंड में तन को छोड़कर चले जाते, क्योंकि ये बाबा की परमानेंट स्थिति का ये परिणाम है कि वो तन में रहते हुए भी अपनी पोजीशन को विस्मृत नहीं हो जाते। और हम बच्चे जब देह में आते हैं और देह रूपी कर्म इंद्रियों द्वारा कर्म करते हैं, तो कर्म करते करते देह में इस कदर अटैच्ड हो जाते हैं कि हम अपने अस्तित्व को इस देह से अलग है ये भूल जाते हैं। इस कारण बाबा के कहने के बावजूद भी हम फौरन डिटैच होकर और बाबा के साथ वतन में चल पड़े, ऐसी हमारी स्थिति हो जाए वो पूर्ण हो नहीं पाती। इससे तात्पर्य यही है कि समय ऐसा आएगा जब बाबा कहते हैं सेकंड में आत्माओं को वापस घर जाना होगा, और बच्चे लास्ट सेकंड का ही तो पेपर है, लेकिन सेकंड के पेपर की तैयारी बहुत काल से अगर होती ना रहेगी तो सेकंड के पेपर में पास कैसे होंगे। इसलिए बाबा के वर्तमान समय हम सभी जो महावाक्य सुन रहे हैं, बाबा बार बार हमको यही कहते हैं कि बच्चे अशरीरी स्थिति का अभ्यास परिपक्व करते जाओ, मैं आत्मा हूं ये भूल न जाओ, और आत्मा ही नहीं मैं शुद्ध आत्मा हूं, शांत आत्मा हूं, पवित्र आत्मा हूं, आनंद स्वरूप आत्मा हूं, अपने स्वरूप की स्व स्थिति की विस्मृति नहीं आनी चाहिए। अगर स्वरूप में रहकर कर्म इंद्रियों द्वारा कर्म कराते हैं और बीच बीच में अटेंशन देते रहते हैं तो देह से अलग होना कठिन नहीं होगा। क्योंकि आज जो मैं क्लास में सुना विषय हमको दिया गया कि जीरो से हीरो बनना है, तो शुरू से लेकर प्रथम लेसन ही बाबा का है जीरो बनना है। जब जीरो बनेंगे अर्थात मैं देह नहीं, तो देह से संबंध रखने वाली मेरी कोई पोजीशन नहीं, कोई देह से संबंध रखने वाले संबंध नहीं, कोई देश नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई भाषा नहीं, जब किसी दीवारों में आत्मा बंधी हुई नहीं रहती है तो आत्मा न्यारी हो जाती है, और न्यारी आत्मा को देह से अलग हट जाना ये संपूर्ण रूपेण जीरो बनना है, और जीरो बनेंगे तब तो हीरो बनेंगे। जिस पर मेरे को ऐसा विचार चलता है कि कोई भी योग्य माता पिता, चाहे वो करोड़ों पति हो और कितने भी उनकी संपत्ति हो, कितने भी महलों मकान जमीन जायदाद हो, लेकिन योग्य माता पिता को सदा ये ख्याल रहता है कि हमारा बच्चा अपने पांव पर स्टैंड करना चाहिए, अपने पांव पर खड़ा होना चाहिए, चाहे पैतृक संपत्ति उसके जीवन को सुखद अनुभूतियां देगी, लेकिन बच्चे को सुयोग्य बनना बहुत जरूरी है। जिसका मैं एग्जाम्पल देती हूँ कि हमारा पांडव भवन, जिसको पहले पोकरान हाउस कहते थे, वहां का जब मालिक शरीर छोड़ा तो जायदाद सब बच्चे को मिली, लेकिन शायद इस कदर योग्यता ना होने के कारण जब वो बच्चा सिगरेट पीता था तो 10 रुपए के नोट उस समय काफी वैल्यू रखता था, 10 रुपए के नोट को सिगरेट उसमें लपेट कर फिर सिगरेट पीता था, ताकि मेरी शान हो कि मैं सिगरेट ही नहीं पी रहा लेकिन 10 रुपए में लपेट कर पी रहा। और आप समझ सकते हैं धन को जलाने से धन नहीं रहेगा, गाय ने खाते खाते कुएं भी खुट जाते हैं, और वो भी स्टेज आ गई जो वो प्रॉपर्टी बिक गई। तो योग्य बनना बच्चों के लिए बहुत जरूरी होता है। अब हम ऐसा देखते हैं कि हम जब कभी विद्या की आवश्यकता हुई तो बच्चों को सरस्वती माँ के सामने नतमस्तक होना पड़ता है, और कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में सरस्वती के डे पर, विशेष दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो मेरा देखा हुआ है कि सरस्वती पूजन चलता है, कि सरस्वती विद्या की देवी है। और आप सब ने देखा होगा दीपावली पर धन लक्ष्मी कह के लक्ष्मी माँ का पूजन भी हम करते हैं, और भक्त जन और धन के अभिलाषी आत्माएं लक्ष्मी माँ की प्रतिमा के सामने नतमस्तक हो जाते हैं, और उन्हें यही अभिलाषा रहती है कि माँ लक्ष्मी मुझे धन देगी, इसलिए जो कुछ भी उसके लिए करने की आवश्यकता होती है, घर की सफाई करना है या अपने नए वस्त्र बनाना है या घर में मिठाइयां लानी है या दीपक जगाने हैं, जो कुछ भी माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए किया जा सकता है वो भक्त जन सब कुछ करते। ठीक इसी प्रकार माँ दुर्गा को शक्ति की देवी कहते हैं, और शक्ति की देवी के सामने भक्त जन नतमस्तक होते हैं, क्योंकि माँ दुर्गा शक्ति प्रदान करने वाली है, या गणेश जी बुद्धि के देवता माने गए, वे बुद्धि प्रदान करने वाले हैं। तो मैं ये बातें आपको क्यों सुना रही हूँ, क्योंकि आज तक हम किसी ना किसी इष्ट, किसी ना किसी देवी के सन्मुख नतमस्तक होते रहे, माथा झुकाते रहे, और अपनी मनोइच्छा की पूर्ति के लिए जो कुछ उनके लिए यज्ञ तप हमें करना पड़ा वो यज्ञ तप भी हमने किया, ताकि इन देवी देवताओं से हमें कुछ ना कुछ प्राप्ति होती रहे। आप सोच सकते हैं कि मांगना ये वास्तविकता नहीं है, लेकिन बाबा ने जब आकर इस प्रकार के ईश्वरी विश्वविद्यालय खोले और नाना प्रकार के स्थानों पर उनकी ब्रांचेस बनाई, इन सब ब्रांचेस में बाबा ने क्या किया, बच्चों को सुयोग्य बनने के लिए शिक्षण केंद्र खोले, ताकि बच्चों को ऐसी योग्यता आ सके, ऐसी कुशलता आ सके कि मेरे बच्चे दर दर जाकर के मांग कर अपनी झोली को भरपूर ना कर सके, लेकिन दाता के बच्चे दाता और दाती का स्वरूप बन सके। हमने पूजा की, देवी देवताओं की उपासना की, उनसे अपनी झोली को भरपूर करने की कोशिश की, लेकिन कभी ऐसा जानने की कोशिश नहीं की कि इतनी ऊंच देवी देवताएं आत्माएं जिनको हम दाता समझकर अपने जीवन में उन प्राप्तियों को प्राप्त करने की तमन्ना रखते हुए उनके सन्मुख जाते हैं, लेकिन इन देवी देवताओं के पास ऐसी कौन सी योग्यता थी जिस योग्यता के आधार पर ये विश्व की आत्माओं के लिए दाता के स्वरूप बन गए। और हर मनुष्य अपनी अपनी श्रद्धा और भावना के अनुसार उनसे अल्पकाल की कामना की पूर्ति करता रहा। तो शिव बाबा ने आकर हमको स्पष्ट किया कि बच्चे, मनुष्य और देवताओं में फर्क क्या है। मानव वो है जिसमें कोई गुण है लेकिन ज्यादातर अवगुण आ चुके हैं, और देवता वो हैं जिनका जीवन गुणों से भरपूर है, क्योंकि गुण ही एक शक्ति का रूप ले लेते हैं। ज्ञान से गुण आते हैं और गुणों से शक्ति आती है, और उस शक्ति का स्वरूप वो देव आत्माएं जिनकी प्रतिमा मात्र से हम अपनी मनोइच्छाओं को पूर्ण करके आते हैं। तो शिव बाबा ने हम बच्चों को स्पष्ट किया कि बच्चे, मांगने से कोई शाहूकार नहीं बन जाता है, और अगर मांगने से कोई शाहूकार बन भी जाए तो सम्माननीय शाहूकार नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा? क्योंकि नाम तो यही होगा, मांगकर ही तो इतने बड़े अमीर बने हैं, इनके पास अमीरी कहां से आई? अरे भिखारी ही तो था, भीख मांग मांग के आज एक मकान बना लिया, तो क्या हुआ? धन हो, इज्जत ना हो, ऐसा धन किस काम का? तो शिव बाबा ने आकर हम बच्चों को वो ज्ञान दिया, जिस ज्ञान को धारण कर हम बच्चों ने अपने जीवन को गुणवान बनने की कला सीखी। और जब गुण हम में आते हैं तो गुण युक्त हो कर्म करने से हमारे कर्म श्रेष्ठता की प्राप्ति के खाते में जमा हो जाते हैं, और गुण ही धीरे धीरे शक्ति का रूप ले लेते हैं। इसलिए बाबा कहता है, मैं तुम्हें मांगने से दाता बनने की कला सिखाने के लिए आया हूं, क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो। दाता क्या नहीं कर सकता, क्या नहीं दे सकता? सारे विश्व की आत्माओं की झोली स्वयं भरपूर कर सकता है, लेकिन वो हम बच्चों को ऐसे झोली भरपूर नहीं करता कि तुम कुछ करो भी ना और तुम्हारी झोली भरपूर हो जाए। वो हमें योग्य बनाने के लिए इस समय शिक्षा दे रहे हैं। इसलिए बाबा कहते हैं, जब आप योग्य बनते हो तो उस योग्यता के आधार से तुम देव पद को प्राप्त करते हो, और जब तुम देव पद को प्राप्त, तब द्वापर युग में तुम्हारी ही प्रतिमाएं, जो संपन्नता के तुम्हारे स्वरूप की प्रतिमाएं हैं, वो मनुष्य आत्माओं को अल्पकाल की कामना की पूर्ण करने का एक बल प्रदान करती हैं। तो बाबा इस समय हमको योग्य बनाते हैं। हम और आप ये समझ सकते हैं कि जब कोई मनुष्य अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना चाहता है या सर्वोच्च बनाना चाहता है, तो उसके रास्ते में टेस्ट अवश्य आएंगे, विघ्न अवश्य आएंगे, बाधाएं अवश्य आएंगी, परीक्षाएं अवश्य आएंगी, लेकिन परीक्षाओं को पार करते करते उसे अपने मंजिल तक पहुंचना है। कई बार जब ज्ञान और योग की शिक्षा लेकर हम मांगने की स्थिति से संपन्न बनने की स्थिति के पुरुषार्थ में लग जाते हैं, तो जीवन में कभी कोई व्याधि आ गई या किसी प्रकार के धन का कोई संकट आ गया या किसी प्रकार की पारिवारिक कोई समस्या आ गई, तो आस पास पड़ोस निकट दूर संबंधी कई बार कहने लगते हैं कि आपने भक्ति करना छोड़ दिया ना, आप रोज मंदिर में जाते थे अब नहीं जाते हो, देखो उसका परिणाम है कि आपका बच्चा बीमार रहता है, आपकी कुल देवी थी आप कुल देवी के पास अभी नहीं जा रहे हो, तो ये उनका अभिशाप है कि आपके सामने धन का संकट आया या तन की व्याधि आई। तो कई बार हम जब अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने के पथ पर चलते हैं, ये मार्ग की परीक्षा हमें मार्ग से हिला देती है, वंचित करने की कोशिश करती है। और कई बार कमजोर आत्मा ऐसा समझते हैं कि सचमुच मैंने मांगा नहीं लक्ष्मी जी से, दुर्गा माँ के मंदिर में शायद मैं कुछ समय नहीं गई, सरस्वती माँ का पूजन मैंने नहीं किया, तो शायद बच्चे योग्य नहीं बन रहे, या धन की कमी आ गई, या पारिवारिक किसी शक्ति की कमजोरी आ गई, हो सकता है कि ये ना करने का ही परिणाम हो। लेकिन उस समय हम विस्मृत हो जाते हैं कि जिस सर्वशक्तिवान ने हम बच्चों को पढ़ाना शुरू किया है, वो हमको सदा कहते हैं कि कोई भी देवी या देवता चाहे प्रतिमा मात्र ही है, लेकिन उनका सम्मान आपके हृदय में अवश्य होना चाहिए, उनके लिए माननीय भावना मन में अवश्य होनी चाहिए, लेकिन एक भक्त बन के उनके सामने मांगने का एक याचक रूप नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम दाता के बच्चे हो, मैं तुम्हें मास्टर दाता बनाने के लिए आया हूं। ख्याल रखना, एक पत्थर की पत्थर को भी अगर प्रतिमा का रूप देना होता है, तो उस पत्थर को कितने हथेड़े लगते हैं और कितने छेने लगते हैं, इतने हथौड़ी और छेने सह सह करके एक मूर्ति तैयार होती है। और अगर हम बाबा के बच्चे अपने जीवन को दिव्य और श्रेष्ठ बनाने के लिए ज्ञान सुनते हैं, गुणों को जीवन धारण करते हैं, शक्तियां अपने जीवन में कलेक्ट करने के लिए प्रयत्न या प्रयास करते हैं, और अगर थोड़ा बहुत संकट व्याधि या किसी प्रकार की कमी और कमजोरी आ गई, तो हम ये क्यों समझ लेते हैं कि शायद पूजा नहीं की, शायद मंदिर में नहीं गए, शायद कुल देवी को नहीं रिझाया, तब हमारे साथ ऐसा हुआ है। ऐसा कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि हम सर्वशक्तिवान बाप के बच्चे हैं। बाबा कहते हैं इस समय जब तक जीरो नहीं बनोगे, भविष्य के हीरो नहीं बन सकते। अगर आप ये कहो कि इस समय हम चलते चलते सर्व प्राप्तियों से संपन्न भी रहे और दुनिया भी हमको कहे हाँ ठीक है ये बहुत अच्छे हैं, और हम दो पाँव में दो नाव में पाँव रख के चलते चले, ये भी समझे चलो देवी देवताओं को भी रिझाते चलो और भगवान से भी कुछ पाते चलो, बाबा कहते नहीं, सचमुच अगर दाता बनना चाहते हो तो दाता की पढ़ाई को नियमित रूप से पढ़ो। कई आते हैं वो कहते हैं ज्ञान आपका बहुत अच्छा है, लेकिन प्रातः के टाइम तो हमने भक्ति करनी होती है, पूजा करनी होती है, मंदिर में जाना होता है। हम किसी को मना नहीं करते कि आप मंदिर में ना जाओ, पूजा ना करो, भक्ति ना करो, जो कुछ कर रहे हो कोई बुरा नहीं कर रहे, लेकिन कब तक पूजा करते रहोगे? क्या आप हमेशा दाता बनी आत्माओं से मांगते रहोगे
या दाता बनी आत्माओं की विशेषताएं, उनके जीवन की महानताएं, उनके जीवन की सर्वोच्चताएं, वो आप अपने जीवन में धारण करके स्वयं भी अनेक आत्माओं को जो तड़प रही हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, उन आत्माओं के भी सहयोगी या सहारे नहीं बनोगे। तो इस समय ये छोटे मोटे टेस्ट आते हैं, लेकिन ख्याल रखना ये टेस्ट होते हैं। पढ़ाई में कहीं नहीं आया कि ये पढ़ोगे तो शायद हमने कुछ ऐसा कर दिया कि धन कम हो जाएगा या बच्चा बीमार हो जाएगा। हर प्राप्ति हम सबको हमारे किए हुए कर्मों के अनुसार मिलती। जो जो हमने कर्म किए हैं, प्रारब्ध उसके अनुकूल हम सबको प्राप्त होती है। इसलिए कभी संशय ना आए, लेकिन शिव बाबा आया है हम बच्चों को दाता या दात्री का स्वरूप बनाने के लिए। इसलिए बाबा कहते हैं ख्याल रखना, छोटी मोटी प्राप्ति की कमी को कमी नहीं समझना। आज एक बच्चा स्कूल में जाकर अच्छे नंबर लेना चाहता है, तो कई बार किसी शादी में जाना है, बहुत सुंदर पिक्चर आ रही है देखना है, कोई सर्कस आ रही है देखना है, लेकिन सभी जा रहे हैं, वो लायक बच्चा है, समझता है कल मेरा एग्जाम है, मुझे अपने एग्जामिनेशन की तैयारी करनी है, इसलिए मैं अपना टाइम वहां वेस्ट नहीं करूंगा। तो उसका ये त्याग वास्तव में किस लिए है? क्योंकि वो उस भाग्य को, ऊंचे भाग्य को प्राप्त करना चाहता है, जिससे कि हमेशा सर्व प्रकार की प्राप्तियों को प्राप्त करता रह सके। भी मुझे शायद अलार्म आ गया है कि मेरे को क्लास पूरी करनी है। ओम शांति।